आज हम इस प्रार्थना में श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति, श्लोक क्रमांक 28। तामेव मनसा गृहन् बभूव प्रमदोत्तमः अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया, अतः वो अगले जन्म में अच्छे कुल में एक सुंदर स्त्री बना। उसने राजा विदर्भ के घर कन्या के रूप में अगला जन्म लिया। बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग श्लोक है। जिस राजा पुरंजन की कहानी हम बहुत दिनों से अलंकारिक रूप में सुनते आ रहे हैं, उसका आज ये कल्मिनेशन है, क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स, कि अभी जीवन भर अपने स्त्री का चिंतन करते हुए अंतिम क्षण में भी अपने स्त्री का ही चिंतन किया, इसलिए स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ पुण्य कार्य भी किए थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए थे जन कल्याण के, इसलिए राजा के घर में, ऐश्वर्य संपन्न घर में वो एक सुंदर राजकन्या बने। आगे पढ़ते जाएंगे तो सुंदर राजकुमार से उसका विवाह भी हुआ। बहुत ही रोचक और बहुत ही समर्पक और हमारे लिए उपदेशक कहानी है। समझना ये है कि जो भी हम सोचते हैं वो हमारा भविष्य बनाता है। जैसे आज हम जो भी कुछ हैं वो हमारे पिछले चिंतन का परिणाम है, और आज जो भी चिंतन हमारा चल रहा है वो हमारे भविष्य को बना रहा है। इसलिए हमेशा कहते हैं वॉच योर थॉट्स, क्योंकि हमारे विचार जो आज चल रहे हैं वो कल वाणी में उसका रूपांतर हो जाएगा, हम उसके बारे में बोलेंगे। बाद में कहते हैं वॉच योर वर्ड्स, क्योंकि आज हम जो कुछ बोल रहे हैं कल उसका क्रिया में रूपांतर हो जाएगा, करेंगे हम उसको। फिर कहते हैं वॉच योर एक्शन, क्योंकि हम जो भी करेंगे वो अगर करते रहेंगे तो वो हमारी आदत बन जाएगी। और फिर लिखा है वॉच योर हैबिट्स, क्योंकि अगर हमारी आदतें हम ध्यान पे रखेंगे नहीं और आदत हमारी बनती रहेगी, जीवन चलता रहेगा, तो उन आदतों से एक दिन हमारा चरित्र बनेगा। वॉच योर हैबिट्स, दे विल बिकम योर कैरेक्टर वन डे। और वो चरित्र जो है वो हमारा, आपका, सबका जीवन का मार्ग होगा जो हमें अंतिम चरण में ले जाएगा, और उसी चरित्र के आधार पर हम अगला जीवन प्राप्त करेंगे। तो शुरू कहाँ से होता है? विचार से। विचार कैसे आता है? स्वतंत्रता के वजह से विचार आता है, क्योंकि विचार करने के लिए कोई बंधन नहीं किसी के ऊपर। आप सब लोग मिलकर अभी विचार कर सकते कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, आपको कोई रोकेगा नहीं विचार करने के लिए, वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन विचार अगर इस भौतिक दुनिया में अटके हुए हैं तो चरित्र भी दुनिया में अटकेगा, और अंतिम चरम में याद उसी दुनिया का आएगा, उसी दुनिया के विषयों का आएगा, उसी दुनिया के विषयों के भोग की याद आएगी, और फिर उन्हीं भोगों की ओर दूसरा जन्म जो है वो जाएगा। हम लोग उसी जन्म में, अगले जन्म में उसी भोगों का भोग लेने के लिए ऐसा अनुकूल शरीर प्राप्त करेंगे और दोबारा इस दुनिया में आएंगे उन भोगों को भोगने के लिए। तो इसी भोग का विचार करते करते राजा पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बन गया। अभी कुछ लोग डिबेट भी कर सकते हैं कि ये सब तो किताबों की कपोल कल्पित कहानियां हैं। हमारा उत्तर यह है कि आप विश्वास रखो या न रखो, आखिर में सत्य जो है ना वो सत्य रहता है। इसलिए शास्त्र जो है वो भगवान के द्वारा, भगवंत शास्त्रात धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म में भगवान के द्वारा कहे गए वाक्य ही कहे दिए गए हैं, भगवान का आदेश ही दिया गया है, भगवान के द्वारा नियोजित जो संदेश हैं वही कहानी के रूप में दिए गए हैं, ताकि हम सब लोग सीखें। आज के समय में भी और एक स्थिति होती है, जब संकट आता है ना, तो संकट के समय में हमारे मन में अंदर गहराई में क्या विचारधारा थी वही ऊपर आती है। अगर हमारे अंदर समझो भय पहले से ही बैठा हुआ है, तो इस संकट काल में वो बहुत ऊपर आएगा। अगर हम पहले से धाड़सी हैं, साहसी हैं, तो इस संकट काल में हमारा साहस ऊपर आएगा, करेज ऊपर आएगा। हम पहले से सेवा भावी है तो इस समय सेवा भाव हजार गुना बढ़ेगा। हम पहले से लुच्चे हैं तो लुच्चागिरी हजार गुना बढ़ेगी। देखो ना, लोग चोरी भी कर रहे हैं ना अभी, लोगों का फायदा उठाकर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चरित्र और जो भी विचारधारा हम अपने मन में परवरिश करते हैं, उसी का परिणाम हमारे जिंदगी के गति में होता है, जिंदगी के चलते हुए और जिंदगी के बाद में भी। इसलिए हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी है कि विचारधारा शुद्ध, पवित्र और आध्यात्मिक बने। और ये विचारधारा हमारे हाथ में है, हम उसके लिए हमारे विचारधारा के मालिक हैं। जब हम विचारपूर्वक हमारी विचारधारा दिव्य बनाएंगे, भगवान के लिए अनुकूल बनाएंगे, प्रकृति के लिए अनुकूल बनाएंगे, तो हमारा जीवन संकट में भी सुखमय रहेगा। क्योंकि दिव्यता, आध्यात्मिकता, ये वो मार्ग है जो संकट काल में भी व्यक्ति को आनंदमय स्थिति में रख सकता है। इतनी शक्ति आध्यात्मिकता में है, भक्ति में है। इसलिए आज की स्थिति में भी जो पहले से ही भक्त बने हुए हैं और कई साल से भक्ति को अपना रहे हैं, वो आज के समय में भी शांत हैं और सामने आने वाले संकट का बड़े ही इत्मीनान से, शांति से सामना कर रहे हैं, आनंदमय भावना में सामना कर रहे हैं, समाधान में और शांति में कर रहे हैं। और जो पहले से ही भौतिकतावादी हैं, बहुत भौतिक भोग में लगे हुए हैं, वो आज परेशान हैं, दुखी हैं, और इसलिए मानसिक रोग, मानसिक तनाव, मनोरुग्ण बढ़ रहे हैं आजकल। विशेष मानसिक परामर्श की आवश्यकता भी दिखाई पड़ रही है, गवर्नमेंट को भी दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पहले से जो मानसिकता हमने परवरिश देके रखी है, वही अभी बड़ी मात्रा में प्रकट हो रही है। इसलिए आप सब लोगों को विनती है, चलो सुखी काल में हमने वो दिव्य विचारधारा को परवरिश नहीं की, कम से कम अभी हमको संकट काल में क्यों ना हो उस दिव्य विचारधारा को परवरिश करना है। अगर हमने सुख में भगवान का नाम नहीं लिया है, तो दुख आएगा तो कम से कम दुख में लो, क्योंकि अगर दुख में नहीं लेंगे तो हमारी जिंदगी में क्या हमारी गति होगी। और अगर सुख में लेने को सीखेंगे भगवान का नाम, तो दुख होगा ही नहीं, दुख की स्थिति आने पर भी दुख का अनुभव नहीं होगा। तो राजा पुरंजन की कथा से हम ये सीखते हैं, जिंदगी भर जो विचारधारा का परवरिश की, उसी का अंतिम परिणाम उसके अगले जन्म में हुआ। अंतिम समय पर वही विचारधारा उनके मन में प्रधान रही, और अंत यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत्य कलेवरम, जो जो विचारधारा अंतिम समय मन में आती है, उसी विचारधारा को अगले जन्म में व्यक्ति प्राप्त करता है, वैसा ही जीवन प्राप्त करता है। और अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कहते हैं अगर अंतकाल में मुझे याद करते हैं, जिसके लिए जीवन भर हम प्रैक्टिस करते हैं, और अंतकाल में अगर उनकी याद आती है तो उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। इतना सरल और सहज फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आज से क्या करना है, अपने विचारों पर ध्यान रखना है कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं, और वो विचारों को सत्संग के माध्यम से अच्छे दिशा में रखेंगे तो हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, अभी के संकट में भी नहीं है, जीवन के अंत में भी नहीं है, और अगले जन्म में भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान हमारा कल्याण करने के लिए बैठे हुए हैं। उनकी दिशा में रहेंगे तो कल्याण निश्चित है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।